सत्रहवा कुंतल, ब्रैकेट में रेत की मछली, पृष्ठ संख्या 250। श्रीमती कांता भारती कृत रेत की मछली उपन्यास के केंद्र में नायिका कुंतल दिखाई पड़ती है। वह सुंदर, शिक्षित एवं सुशील है। वह शोभन जैसे एक छद्म साहित्यकार के संपर्क में आती है और वह उसके हाथों बुरी तरह फंसती है। कुंतल तो शोभन से इतना प्रभावित होती है कि उससे विवाह सूत्र में बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने ऐसे ढोंगी छद्म साहित्यकार के विषय में गंभीर स्वर में कहा था, इन्वर्टेड कॉमा अपन, तुम्हें इस समय कुछ नहीं सूझ रहा। वह कवि और लेखक है, आज तुम पर प्राण देता है, कल उसकी संवेदना और किसी के साथ हो जाएगी। इस पर वह अपने पिता से कहती है कि अगर वह दिन आ गया तो आपके घर लौटकर नहीं आऊंगी। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ, रेत की मछली, पृष्ठ संख्या 280। पैराग्राफ चेंज। कुंतल के कुछ दिन तो शोभन के साथ अच्छे गुजरते हैं। कुंतल एक विवाह में शामिल होने के लिए 2 दिन बाहर दूसरे शहर जाती है। उन 2 दिनों में वह उसे 2 पत्र लिख डालता है। इसी प्रेम का फल है तोरू तोरना। पर इस प्रसंग के बाद कुंतल शोभन के लिए बासी हो जाती है। 7 जून 1960 को वह घर और शोभन दोनों को छोड़कर बेटी तोरण को अपने साथ ले उस रेगिस्तान से निकल आती है और 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद छाती पर पत्थर रखकर 18 मार्च 1962 को बेटी तोरण को भी शोभन के हवाले कर देती है। तोरू को सौंप कर कुंतल ने एक साहस का परिचय दिया है, क्योंकि प्रायः इसी बिंदु पर आकर भारतीय स्त्री, जो एक माँ भी है, कमजोर पड़ती है और स्त्री की इसी कमजोरी का फायदा पुरुष वर्ग उठाता रहा है। संतोला बेनोजी आदि अनेक नारियों के साथ लेखक महोदय शोभन का घनिष्ठ संबंध रह चुका है, क्योंकि उन्हें प्रेरणा के लिए कोई न कोई नई लड़की चाहिए। इस बहु स्त्री गामिता के औचित्य को सिद्ध करने के लिए वह कहता है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, कुंतल, तुम मुझे महान लेखक बनाना चाहती हो ना, उसके लिए पत्नी के अतिरिक्त प्रेरणा भी तो लेनी चाहिए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ, रेत की मछली, पृष्ठ संख्या 206। पैराग्राफ चेंज। अस्पताल में पत्नी प्रसव वेदना से कराह रही थी, तब हमारे ये महान लेखक उसके कमरे में मसहरी में मीनल के साथ सोए हुए थे। शोभन में वासना का भयानक ज्वालामुखी है, कामुकता की पराकाष्ठा है, बेहोश होती पत्नी को भी निर्वसन करता है, मीनल को भी निर्वस्त करके आलिंगन देता है। एक बात तो पत्नी की गोद में मीनल का सिर रखकर उससे सहवास करता है। पृष्ठ संख्या 251। प्रेरणा हेतु यह सब करना पड़ता है। अब पति को महान लेखक बनाना हो तो इतना भोग तो देना ही चाहिए ना। पैराग्राफ चेंज। कालांतर में शोभन विवाह किए बिना ही दूसरे नगर में मीनल के साथ रहने लगता है। जब कुंतल अपना अधिकार मांगने उसके पास जाती है, तब लात घूसों और चप्पलों से बात करता है। मेघदूत की पंक्तियों का गान करने वाले बड़े बड़े साहित्य सम्मेलनों में मानवीय मूल्यों की ध्वजा को फहराने वाले, अपने को बुद्धिजीवी कहने वाले लेखक महोदय के हाथों और पैरों का अंतर मिट जाता है। अर्थात वह कुंतल को पीटने के लिए हाथों और लातों दोनों का प्रयोग करता है। जानवर की तरह मार मार कर शोभन जबरदस्ती उससे गलत बातें लिखवा लेता है और संबंध विच्छेद की याचिका दायर कर देता है। भरण पोषण के झमेलों से बचने के लिए वह कुंतल को चरित्रहीन भी साबित करता है। तलाक मिल जाने पर मीनल से विवाह कर लेता है। इन सब परिस्थितियों का कुंतल को शिकार होना पड़ता है। शोभन ने कुंतल को सभाओं में तभी तक साथ रखा था जब तक उसकी उपस्थिति उसका स्वार्थ साधन बनती रही। वह अपने को एक महान कलाकार और लेखक मानने मनमाने लगता है और वह मीनल से कहता है, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, मीनल, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं भारत में पैदा हुआ। अगर यूरोप में होता तो जापाल सार्त्र को भी लोग इतना बड़ा नहीं मानते। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज संदर्भ ग्रंथ, रेत की मछली, पृष्ठ संख्या 281। पैराग्राफ चेंज। कुंतल एक परित्यक्तता थी। युवा महिला संघ के सेक्रेटरी से झड़प हो जाने के बाद उस भवन को उसे छोड़ना पड़ता है। शोभन से तलाक लेने के पश्चात कुंतल नौकरी की खोज में गली गली भटकने लगती है। हमारे समाज में पुरुष विहीन स्त्री की जो अवदशा होती है, उसका अनुभव उसे यहाँ होता है। ऐसी स्त्री के ऊपर पुरुषों की नज़र गीध कौओं की तरह नोच नोच खाने को मंडराती है। पति शोभन से उसका संबंध विच्छेद हो गया है। पितृगृह में शरण पाने में उसकी खुद्दारी बीच में आ रही है। अतः समाचार पत्र में विज्ञापित एक विज्ञापन को पढ़कर जब वह दिल्ली की एक तंग गली में पहुंचती है तो वहां स्कूल के नाम पर मिलती है अंधेरी कोठरियां, बच्चों के नाम पर वीरानी और प्रिंसिपल के नाम पर एक लंपट व्यक्ति। परंतु उस व्यक्ति के सामने आत्मसमर्पण करने के स्थान पर वह संघर्ष के पथ का वर्णन करती है और नौकरी की तलाश जारी रखती है। कुंतल के सामने अनेक समस्याएं तथा संतरासपूर्ण स्थितियां आती हैं, लेकिन उसकी चारित्रिक दृढ़ता तथा प्रतिकूलताओं से टकराने की क्षमता श्लाघनीय ही कही जा सकती है। 18वां श्यामा ब्रैकेट में उकाओ, पृष्ठ संख्या 251। भारतीय समाज में वायवी क्रांति भले ही कितनी हो चुकी हो, लेकिन सच यही है कि आज भी अधिकांश औरतें परंपराओं और मर्यादाओं की बीड़ियों से जकड़ी हुई हैं। यह स्थिति भारतीय उपन्यास लेखन की शुरुआत में भी थी और आज भी बरकरार है। क्षितिज शर्मा का उपन्यास उकाओ शुरुआत से ही ध्यान खींचता है, तो इसीलिए कि यहाँ इन स्थितियों की तरफ न सिर्फ संकेत है बल्कि औरत को उनसे बाहर निकलने की कोशिश करते भी दिखाया गया है। उपन्यास की नायिका श्यामा किसी क्रांति का बिगुल नहीं बजाती, मगर यह भी सच है कि वह खुद को हालात और नियति के भरोसे भी नहीं छोड़ देती। पैराग्राफ चेंज। श्यामा का अध्यापक पति जब एक अध्यापिका से विवाह कर लेता है तो उसका टूट जाना स्वाभाविक है। पृष्ठ संख्या 252। जिंदगी की अंतहीन खड़ी चढ़ाई उसे बार बार किसी सहारे की तलाश के लिए मजबूर कर देती है। ऐसे में गोधन से उसकी आत्मीयता बढ़ती है, पर वह भी रानी खेत में दम तोड़ देता है। गर्भ में गोधन के बच्चे को संभालने श्यामा जीने की हिम्मत जुटाती है। अब उसका संबल गोधन की स्मृतियां और यह होने वाला बच्चा ही है। यह बच्चा ही आगे चलकर सिब्बू बनता है, जिसके प्रति श्यामा का समर्पण देखते ही बनता है। चूंकि यहाँ विचार जीवन पर थोपा नहीं गया बल्कि जीवन के अनुभवों से फूट कर निकला है, इसीलिए श्यामा के पास इसका तर्क है। टूट कर भी वह खड़ी होने की इच्छा बनाए रखती है ताकि सिब्बू खड़ा हो सके, और इसके लिए उसे तलाश रहती है अपने सिर पर एक साय की। पैराग्राफ चेंज। गंगा दत्त का प्रवेश श्यामा के जीवन में, या कहें श्यामा का प्रवेश गंगा दत्त के जीवन में, उपन्यास को नाटकीय मोड़ देता जरूर है, लेकिन अजूबा यह नहीं है। दरअसल श्यामा को सुबू के लिए पिता का नाम भर चाहिए था, जो गंगा दत्त के रूप में मिल भी गया, और बगैर किसी शोरगुल के यहीं से उकाओ में क्षितिज अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। उम्र के तीसरे पहर में चल रहे गंगा दत्त श्यामा के लिए मात्र सहारा ही होते हैं। साये की तलाश में निकली जरूर थी, पर स्थितियां उसे खुद एक साये में बदल देती हैं। सिब्बू के प्रति समर्पण ही है जो श्यामा को बदले हुए परिवेश गंगा दत्त के गांव तमिली आकर भी तन्मयता की रौ में बांधे रखता है। गंगा दत्त की पहली पत्नी तो उसकी दीदी ही बन जाती है। निःसंतान यह दंपत्ति दरअसल श्यामा के बेटे सिब्बू को अपनी उम्मीद की किरण के रूप में देखने लगते हैं। पैराग्राफ चेंज। कथा के केंद्र में शुरू से आखिरी तक श्यामा बनी रहती है। सिब्बू कहीं केंद्र बनता भी है तो श्यामा की सोच में ही। श्यामा एक जुझारू चरित्र है। आर्थिक स्थितियों और जीवन के टूटते चले जाने के बावजूद अड़ी और खड़ी रहती है श्यामा। यही वजह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी प्रायः वह जो कुछ हासिल करना चाहती है उसे पा ही लेती है। निर्द्वंद चरित्र नहीं है श्यामा। दूसरी शादी कर लेने पर उसमें अपराध भाव भी पैदा नहीं होता कि वह टूट ही जाए। तमिली आकर भी वह अपने मायके को भूल नहीं पाती। माँ की खराब तबीयत की खबर पाकर वह रात के समय चुपके से मायके भी पहुँचती है। मायके पहुँचने से पहले क्षितिज शर्मा उसके अंतर्मन की थाह लेना नहीं भूलते। पैराग्राफ चेंज। जीवन से सीखते चलने वाला यह यादगार चरित्र है श्यामा। उसे दिखावे से कहीं ज्यादा चिंता जिंदगी को संवारने की है। श्यामा के स्वप्निल जगत में गोधन लौट लौट कर आता है। जहां वह कमजोर पड़ रही होती है वहीं आता है और संघर्ष की प्रेरणा देकर गायब हो जाता है। जो चाहती है वह पा जाती है श्यामा, लेकिन उसकी सोच का मूल आधार पारंपरिक ही है। अपनी जान में वह उसे तोड़कर बाहर नहीं निकल पाती। एक तरह से वह दूसरों के लिए भी खुद को खपा देना चाहती है। पृष्ठ संख्या 253, पैराग्राफ चेंज। वक्त के साथ चीजें कैसे खत्म होती चलती हैं, कठपुतिया इसका सबूत है। लेकिन उपन्यासकार बहुत चुपके से कहता है, भीतर का या छुपा हुआ ही, ब्रैकेट में बना हुआ, बाहर की खत्म हो गई चीज को जिंदा रखता है। परिवेश विशेष की हवाई जानकारी नहीं है उकाओ में। फसल का समय, पहाड़ की जटिल खेती और उससे जुड़े किसानों के दुख सुख आदि सभी यहाँ पूरे विस्तार से मौजूद हैं। कई बड़ी चीजों पर छोटे छोटे लेकिन असरदार कमेंट यहाँ कथा प्रवाह में सहजता से उपस्थित हैं। एक जगह इन्वर्टेड कॉमापन, भूख और जात का संबंध तो पेट से ही गुना जाने वाला हुआ, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, कहा गया है, तो दूसरी जगह बाहर से आने वालों के जरिए ग्रामीण किस तरह शोषित हो रहे हैं यह भी खुलता चलता है। पैराग्राफ चेंज। गांव का माहौल यहाँ पूरेपन में मिलता है। प्रेम, ईर्ष्या, गुस्सा और झगड़ा, सहयोग और घृणा यहाँ भी मौजूद है। लेकिन सबसे ऊपर है भोली भाली पर्वतीय जीवन की मेल मिलापी वृत्ति। बहुत सहज अंदाज में यह उपन्यास अतीत से वर्तमान और वर्तमान से अतीत में ले जाता है। लेकिन दो तिहाई कथा के बाद यह जैसे रोजमर्रा के ब्यौरे में तब्दील हो जाता है। सिब्बू के शहर चले जाने के बाद तो श्यामा ऐसे रीत जाती है जैसे अब और कुछ शेष ही नहीं रहा। प्रश्न उठता जरूर है, लेकिन संकेत रूप में ही, कि क्या औरत का दुख कोई दुख नहीं होता? खुद श्यामा भी तो अपने दुख भूल सिब्बू के भविष्य के सपने बुनते बुनते ही जिंदगी की शाम के करीब जा पहुंचती है। सच पूछें तो श्यामा संघर्षशील पर्वतीय औरतों का प्रतीक बन पड़ी है।